नमस्कार। थर्ड ईयर बीए में अपना जो कोर्स है URD 461, जिसका नाम है अहित उस्तका अदब, और इसमें इंशाई और इंशाई ये जो किताब है उसके बारे में हम और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ये आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर खान हसने नकीब सर है, और जो के पुसत से आए हुए हैं। खान साहब के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वो ना ही केवल एक प्रोफेसर या एकेडमिक है, बल्कि वो एक कवि और साहित्यिक भी है। उन्होंने इंग्लिश, उर्दू और इतिहास जैसे विषयों में अपनी तालीम हासिल की है। उन्होंने बकायदा लॉ भी किया हुआ है, और इस तरह से अपने को पता चलता है कि अगर उर्दू साहित्य का किसी को उसमें इंटरेस्ट आ जाए, इसमें रस पैदा हो, तो वह अपनी कौन सी भी शाखा का या कौन सी भी स्ट्रीम का एजुकेशन लो, उसको उर्दू का वो जो चस्का लगता है तो वो उसमें और बढ़ता जाता है और वो नए नए मुकाम हासिल करता है। प्रोफेसर साहब बहुत से कमिटियों में भी है जिसमें वो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और उर्दू साहित्य विद्यार्थियों को बिल्कुल यानी सरलता से कैसे उनको जानकारी हो, उनकी मालूमात हो, इसके बारे में उनका जो प्रयास है वो निरंतर चालू है। नमस्ते सर।
नमस्ते सर।
मैं तो पहले आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ
जी।
और सर, जैसे कि मैंने बताया, इंशाई और इंशाई ये हमारे बीए उर्दू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है
जी।
जिसके बारे में जानना, अच्छी तरह से जानकारी अपने स्टूडेंट्स को होना बहुत ही आवश्यक है। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि इंशाइया का मतलब क्या है, और ये इंशाइया का उर्दू साहित्य में क्या महत्व है
जी। सबसे पहले मैं फिर एक मरतबा यूनिवर्सिटी ने मुझे फिर ये मौका दिया है कि मैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट से आमना सामना हो, उनका मेरी फिर मुलाकात हो उनसे, और इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो। एक बड़ा अच्छा तासुर मेरे जहन पर आपका, यहाँ के जो लोग हैं उनका, और विद्यापीठ का, यूनिवर्सिटी का कायम हुआ है, तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।
धन्यवाद।
और आपने जो सवाल किया है कि इंशाइया क्या है, और जो सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है इंशाइये का फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर के कोर्स में, तो उसका मतलब मफहूम क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा एक रिकैप के तौर पर।
सही बात
कि इस पर तो शायद बात हो भी चुकी हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा बता दूं कि इंशाइया जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज अरबी जुबान के लफ्ज नश आ हमजा जबर आ इससे बना है। इसका मतलब है पैदा करना, अंग्रेजी में इसे कहेंगे टू मेक समथिंग। तो फिर इंशाइये के माने के हुए, अगर उसके हम बोलते हैं कि इसका ये लफ्ज आ रहा है अरबी से, इसके माना होते हैं कि इंशा यानी कोई चीज जो नई पैदा की जाए, वो तो फिर क्या चीज। तो इंशा जो है वो लिखने की तहरीरी कोई चीज जो लिख रहे हैं आप, जैसे एक तरफ आप शायरी लिख रहे हैं, एक तरफ आप लिख रहे हैं नॉवेल, एक तरफ लिख रहे हैं अफसाना, तो इंशाइया इसी की एक टाइप, एक किस्म है इसकी इंशाइया। अब इसमें इंशाइया की हमने लफ्ज भी देख लिए कि भी नश और आ, ये है कि नश आ यानी पैदा करना। तो क्या चीज पैदा करना, तो तो तहरीर में जब कोई चीज लिखी जा रही हो तो उस वक्त लिखते वक्त उसमें अल्फाज में ख्यालात की नुदरत यानी नयापन हो, उसमें ताजगी हो, यानी लिखने वाला ख्यालात का नयापन पैदा करे, ताजगी पैदा करे, अछूतापन पैदा करे, ये चीजें पैदा करेगा तो वो इंशा कहलाएगी। उसमें जराफत हो, उसमें तंजो मिजा हो, उसमें बहुत ज्यादा उसको बहुत मुश्किल बनाकर बात पेश ना की गई हो, एकदम हल्का बनाकर दिल से निकल रही है और दिल तक पहुंच रही है, बस इस तरह की कोई तहरीर हो जिसे पढ़ने वाला दोनों काम हो जाए, एक तो लिखने वाला जो मैसेज देना चाह रहा है, जो पैगाम देना चाह रहा है, वो भी पढ़ने वाले तक पहुंच जाए और पढ़ने वाला उसको महसूस भी हो, एंजॉय भी करे, उसका लुत्फ उठाए, तो उसको इंशाइया कहा जाएगा। हालांकि इंशाइया के बारे में एक जमाने तक बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूजन मुगालता था, एक कि इंशाइया इसको कहा जाएगा या इसको कहा जाएगा, लेकिन अब एक बात तय हो गई है कि इंशाइया उसे कहा जाएगा कि जो तहरीर की ऐसी किस्म है जिसमें ख्यालात नए अंदाज से पेश किए गए हों, उसमें ताजगी हो, एक ही बात है लेकिन उसको नए ढंग से कहा जाए, एक ही बात है। जैसे जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि भी एक जुमला है कि अरब का, मुझे एक बात कहनी या उसके हवाले से बात याद आ रही है कि अरब में अगर उनको यह कहना हो अगर कि तू मर जाए, ये इंशाइये की मिसाल दे रहा हूं मैं, कि अगर उनको यह कहना हो कि तू मर जाए तो वहां ऐसा नहीं कहते, वो कहते कि जा तुझको तेरी मां रोए। अब मां कब रोएगी? जब वो मरेगा। तो वो ये लफ्ज मरने का यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं करते, वो बोलते तुझको तेरी मां रोए। अब इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो एक ही बात है लेकिन उसको एक नए अंदाज से कहना, वो इंशाइये का कमाल है, यह है इंशाइया।
सर, जैसे कि आपने कहा कि नई बात कहने के लिए बहुत बहुत बड़ी सोच की गरज है
जी,
उसकी बहुत यानी वो सोच अपने आप में रखना, पुराने चीजों को अपने ढंग से या नए सरीके से देखना, यह इंशाइया में बहुत उसकी जरूरत है। तो ऐसे कौन से मशहूर इंशाकार है कि जिनका नाम आज भी लिया जाता है और उन्होंने जो इंशाइया लिखे उसका क्या वैशिष्ट्य क्या है उनका और विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जरा बताइए।
जी जी जी, देखिए इंशाइया निगारों में, चूंकि अगर हम इंशाइये की तारीख देखें तो उसमें एक साहब ने यह कहा, जावेद विशिष्ट नाम है उनका, उन्होंने एक नजरिया पेश किया कि इंशाइया जो है वो मुल्ला वजीह की जो सबसे मशहूर किताब है सबरस, तो सबरस भी चूंकि उसके टुकड़ों में है, वो किस्तों में है, 10-12 टुकड़े हैं उसके, उन्होंने कहा कि हर टुकड़ा जो है कि इंशाइया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा समझ लिया जाए तो इंशाइया तो बहुत पुरानी, क्योंकि वो तो 1600 कुछ 17वीं सदी ईस्वी की बात है, ये तो 17वीं सदी ईस्वी की बात है ये मुल्ला वजी की, और इंशाइया जो है वो अभी अभी की कुछ 50-60-70-80 साल पहले की कोई एक सिंफ है जिसको इंशाइया कहा गया, उससे पहले नहीं था। तो उस लिहाज से हम ये मान लेते हैं। अब नए जो इंशाइया निगार थे तो उसमें मैं खास तौर से जो नाम लूंगा, ख्वाजा हसन निजामी हैं, उसके बाद वजाहत अली संदेलवी हैं, पितरस बुखारी हैं, शौकत थानवी हैं, ये ऐसे नाम हैं कि जो एकदम वाज़े तौर पर हमको कहीं भी, आप किसी भी निसाब में, किसी भी जमात की निसाब में, हाई स्कूल के अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें इन लोगों में से किसी ना किसी का कोई इंशाइया मिल जाएगा, आगे की तो एमए तक, ये पीएचडी लेवल तक इन लोगों का एक तसल्लुत है उस पर, इंशाइये पर। उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, मुल्ला रमूजी हैं, मुल्ला रमूजी का तो आप जानते भी होंगे कि मुल्ला रमूजी के नाम से भोपाल में जो एक बिल्डिंग है रमूजी, मुल्ला रमूजी भवन, तो वो भवन में उर्दू मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का ऑफिस है वो।
अच्छा,
हाँ, मुल्ला रमूजी का, क्योंकि वो वहीं के थे, तो वो ये सब इंशाइया निगारों में थे, वजाहत अली संदेलवी और आपके शाह अली अकबर, रामलाल, उसके बाद आपके कन्हैया लाल कपूर हैं, फिक्र तौंसवी हैं, आज के इसमें अगर हम देखें तो पहले वजीर आगा थे पाकिस्तान के, उसके बाद अभी उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद यहाँ के हमारे इलाके की अगर हम बात करें तो शकील एजाज हैं, अकोला से, और एक जो सबसे बड़ा नाम जो इंशाइयों का आता है, वो आप भी बहुत उनसे महसूस होंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम आता है। उनकी चार किताबें हैं जिसमें आबे गुम है, जर गुजिश्त है, खाकम बदान है और चराग तले। तो ये ऐसी चीजें हैं कि मैं जब वो पढ़ी वो किताबें, तो एक ही किताब पढ़ने के लिए मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि मैं उसको एक पेज से ज्यादा कभी पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार ये तीन चार लाइन पढ़ी और उसके बाद जो हंस रहा हूं तो हंस रहा हूं, कि इतना मजा आ रहा है उसमें। तो ये इंशाइया का कमाल होता है, ये खास कमाल है इसका।
सर, जैसे कि आपने कहा कि इंशाइया लिखने के लिए जो वर्तमान स्थिति है या जो घटनाएं हो चुकी है उसके बारे में अलग से सोचना और वो लिखना बहुत जरूरी है।
जी।
अभी जैसे कि हमने अफसाने के बारे में सोचा और नॉवेल के बारे में सोचा जिसमें प्यार मोहब्बत का जिक्र है, अफसाने में दर्द का जिक्र है, तो इंशाइया का कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं है क्या कि इसके बारे में ही लिखो, या जो जो कुछ आसपास दिखाई देता है उसके बारे में लिखो, ऐसे यानी इंशाइया का जो प्लॉट है
जी
वो ऐसा फिक्स नहीं होता, उसके बारे में जरा बताइए।
बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि इंशाइये का मैटर जो है वो इंशाइया निगार जिसे कहते हैं, जो इंशाइया लिखता है उसको इंशाइया निगार कहते हैं। तो इंशाइया निगार इंशाइये का मैटर अपने आसपास से उठाता है।
सही बात है।
वो उठाता है जो उसको नजर आ रहा है। यहां मिसाल के तौर पर ये कुर्सी है मेरे सामने, तो इसी सिलेबस में कुर्सी के उन्मान से एक इंशाइया है। हम खाना खाते हैं, चमचा है, इसी सिलेबस में चमचे के उन्मान से भी एक इंशाइया है। तो इंशाइया निगार यहां से वहां से जहां उसको दिखाई दे रहा है, जैसे आप और हम किसी ऑफिस में जाना ही पड़ता है मजबूरी में, या कहिए या जरूरत से कहिए कैसे भी, तो वहां जाकर हमको जो सबसे पहले जिससे वास्ता पड़ता है वो होता है एक बाबू। उसमें बाबू का एक इंशाइया है कि बाबू क्या होता है, तो उसको बहुत ही मिजाह के और हंसी मजाक के ढंग में उसके बात में बात पैदा की जाती है। ऐसे नहीं कि उसको जो बहुत भारी लग के उसको बुरा लगे कि मुझे बुरा बोल दिया, या कि उसको लगे कि किसी को दूसरे को लगे कि ये बहुत तारीफ कर दी, ऐसा नहीं है, बल्कि एकदम लाइट इसमें उसको कि मजाक की मजाक हो गई और बात की बात हो गई। यूं भी कहा जाता है कि भाई बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है।
क्या बात है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें या घटनाएं है उसको इंशाइया में लाया जाता है। अभी जिस तरह के हम बात कर रहे थे पिछले बार भी, तो आपने कहा था कि जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, उसको अगर ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा तो वो बहुत छू जाता है दिल को। तो इंशाइया जो निगार है तो उनका ये जो सामान्य या कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं उसके प्रति जो लगाव है, तो उसका साहित्य में क्या उनको वो मोल दे मिला है, या जो साहित्यकार है वो इंशाइया का निगारों को उस नजरिए से देखते हैं जिस तरह से उन्होंने देखना चाहिए, या दूसरी बातों में कहे या लफ्जों में कहे तो इंशाइया निगार जो रहते हैं उनको वही आदर, वही सद्भाव, वही प्रेम मिलता है जो किसी नॉवेल या अफसाने जो लिखते हैं उनको मिलता है, इसके बारे में जरा आप मुझे बताइए।
जैसे एक इसी सिलेबस में एक चीनी एस्ट्रे की याद में इसी सिलेबस में एक इंशाइया दिया हुआ है कि चीनी एस्ट्रे की याद में, उसको लिखने वाले का नाम है मुज्तबा हुसैन, और मुज्तबा हुसैन पद्मश्री पद्म विभूषण। अब इस पर से आप समझ लीजिए कि समाज में इंशाइया निगार की कितनी कदर होती है, इस पर से समझ में आ जाता है कि आज उन्होंने उनका इंशाइयों के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा तो उसकी वजह से उसको उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा उनको। अगर अच्छा, पद्मश्री का अवार्ड कोई गवर्नमेंट ने अकेले नहीं दे दिया, समाज की तरफ से आने वाली रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगी की वजह से कि उनसे कहा गया कि नहीं, ये समाज के एक बड़े तबके पर इन्होंने अपना असर डाला है, इनकी तहरीरों ने, इनके इंशाइयों ने नए नए पहलू निकाले हैं, तो इसलिए इनका बहुत कद्र होनी चाहिए, तो उनको अवार्ड दिया गया, मतलब पद्मश्री का।
आपका कहने का मतलब है कि जो इंशाइया निगार है
जी,
वो समाज को एक आईना दिखाते हैं।
बिल्कुल,
इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीजों को बदलना जरूरी है, उसका वो आईना हमें दिखाते हैं। सर, जब इंशाइया की बात करते हैं तो जाहिर है कि गुलशन उम्मीद की बहार, उसका
जी।
अगर जिक्र ना हो तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इंशाइया के बारे में कुछ बात चल रही है।
सही,
तो गुलशन उम्मीद की बहार के बारे में जरा हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए।
जी, गुलशन उम्मीद की बहार लिखा हुआ है मोहम्मद हुसैन आजाद का, जिन्होंने दरबार अकबरी जैसी किताब लिखी, जिन्होंने आबे हयात जैसी किताब लिखी है, ऐसी मशहूर किताबें उन्होंने लिखी हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद की सबसे अहम खिदमत, उर्दू को एक नया लबो लहजा दिया। इसमें जो उनका इंशाइया शामिल है, जिसका नाम आपने लिया है कि सुबह उम्मीद वाली बात जो है, तो चूंकि इंशाइये का जो उनवान होता है उसकी खासियत यह होती है कि आप उनवान देखकर उसको समझ सकते हैं कि लिखने वाले ने या इंशाइये निगार ने क्या, कौन सी बात उसमें पेश की होगी। तो सुबह उम्मीद में मोहम्मद हुसैन आजाद ने जो बात पेश की, वो उस बात को उन्होंने ये कहा कि इंसान दुनिया में जो पैदा हुआ है, पैदाइश से लेकर तो आखिरी उम्र तक, वो एक चीज ऐसी है जिसका दामन वो कभी नहीं छोड़ता, और उसका नाम है उम्मीद।
क्या बात, क्या बात।
तो एक उन्होंने इसमें, इस इंशाइये में उन्होंने ये बात बताई है कि कुछ लोग, एक हुजूम है, और वो हुजूम एक तरफ एक सिमत चला जा रहा है, और इस हुजूम में अलग अलग किस्म के लोग हैं, इसमें बूढ़े हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें जवान हैं, इसमें औरतें हैं, इसमें लड़कियां बालियां हैं, इसमें सारे नौजवान हैं, पहलवान हैं, कमजोर हैं, हर तरह के लोग हैं। और एक बूढ़े को इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो वो बूढ़ा बिल्कुल इनकी तरफ ना तवज्जो ना करते, चलो मेरे पास वक्त नहीं है, चला गया आगे। दूसरे को रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि भाई माफ करना, मैं, उसने थोड़ी नम्रता से आजीजी के साथ उसने कह दिया गया। मतलब ये कि बहरहाल उन्होंने जिसको भी उस वहां रोकने की कोशिश की तो वो कोई रुका ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आगे जाकर मैंने खुद देखा कि ये सब कहां चले जा रहे हैं। तो आगे जाकर एक बाग नजर आया मुझे, एक गार्डन नजर आया, और इस बाग में मैंने देखा कि एक खूबसूरत मलेका वहां पर मौजूद है, और वो ये जो पूरा जितना भी हुजूम है ये इनको आरजुएं बांट रही है, और आरजुओं से एक उम्मीद पैदा हो रही है, और सारे के सारे वो उस उम्मीद में कहीं सब खो गए। अब वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं होती है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद ने इस इंशाइये में यही कहना चाहा है कि हर इंसान अपने अपनी, हर अपने अपने मैदान की उम्मीद रखता है। एक नौजवान है वो किसी और चीज की उम्मीद रखता है, एक बूढ़ा है उसकी उम्मीद क्या रहेगी कि भी चैन से मेरी जिंदगी गुजरे, एक लड़की है उसकी गुजरे कि भी मुझे एक खूबसूरत शहजादा, मेरे सपनों का राजा मुझे मिल जाए, या और इस तरह से एक बच्चा है उसकी ये कि मुझे ये मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, ये हो जाए। हर एक कोई ना कोई किसी न किसी उम्मीद में जिए जा रहा है। तो आखिरी में जाकर उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से हट गया तो मुझे एक चीज नजर आई जिसका नाम था किनात। वो किनात की झोपड़ी थी जिसके अंदर वो उम्मीद उम्मीद कुछ नहीं, जो है जैसा है ठीक है, और वो सबसे सुकून का बाइस था। तो जिस अंदाज से उन्होंने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने जिस अंदाज से ये इंशाइया लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि ये सब पढ़ें, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी ये पढ़कर देखें कि किस तरीके से पहले जमाने के लोग नसर लिखा करते थे, इंशाइया लिखा करते थे, तो आपको जुबान कैसी मीठी है उर्दू जुबान की। दो आपको, चूंकि आज जो जुबान लिखी जाती है और उस वक्त जो जुबान लिखी जाती है, लिखी जाती थी, तो वो दोनों जुबानों के दरमियान आपको तालमेल करना आ जाएगा।
सही बात।
और ऐसी नफीस मीठी और जुमलाबंदी ऐसी चुस्त हुआ करती थी। तो आज क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे लिखा जा रहा है, ये दोनों के दरमियान का एक अच्छा, तो पढ़ना चाहिए आपने।
सर, जैसे कि आपने कहा कि इंशाइया का जो विषय है या जो टॉपिक है वो एक प्रकार से गंभीर भी हो सकता है और बड़े मजे क्या भी हो सकता है।
हाँ, दोनों होता है,
दोनों तरफ से वो अच्छा ही दिखता है,
जिसको हम खट्टा मीठा कह सकते हैं।
खट्टा मीठा कहते हैं, सही बात है। तो जब ये कहते हैं तब झिंगुर का जनाजा, जो वो काफी मशहूर है ये भी।
जी जी जी।
तो ये झिंगूर का जलाना जो है वो किस तरह से उसका जो टाइटल है वही जब पढ़ते हैं वो टाइटल तभी हंसी आ जाती है। तो इस इंशाई हमें क्या कहना चाहता है इंशाई निगार?
देखिए ये जी 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 झिंगूर का जनाजा ये ख्वाजा हसन निजामी जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के दरबार के सज्जादा नशीन थे और उर्दू अदब के भी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका लिखा हुआ ये इंशाइया है। झिंगूर का जनाजा एक ऐसा मौजू है जो वाकईतन हमको सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि भाई झिंगूर जैसी एकदम हकीर सी चीज क्या है? झिंगूर एक कीड़ा जिसको हमने पैर से मसल दिया चले गए, तो ये क्या चीज है? तो ख्वाजा हसन निजामी यानी इंशाइया निगार ये कहते हैं कि अचानक एक दिन वो बैठे तो उनको एक झिंगूर नजर आ गया। नजर आया मतलब वो झिंगूर हमेशा उनके आसपास जो है वो झिंगूरों का तो वो बिल्कुल जो चूंकि मौजू ही उन्होंने बांधा है तो उसका खत्म हो गया, वो मर गया। अब वो जब मर गया तो इनको सब याद आने लगा कि मरा तो क्या है, एक झिंगूर खत्म हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो झिंगूर को उन्होंने कहा कि मियां झिंगूर तुम किस तरह से जब जिंदा थे तो ऐसी मूछें ऐसे कर करके तुम बिल्कुल इधर उधर से ऐसे घूर घर के देखा करते थे
बड़े रौब से।
तो हाँ तो उन्होंने इसको, और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने जो उसके लिए तमसील इस्तेमाल की है उन्होंने कहा कि कैसर विलियम का कंपैरिजन उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुआवजना किया है झिंगूर के मूछों को कैसर विलियम की, क्योंकि कैसर विलियम की मूछें जो है वो बड़ी नोकदार हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये झिंगूर की मूछें देखकर मुझे कैसर विलियम याद आ गया। तो अब झिंगूर क्या करता था? उन्होंने कहा कि भाई बाबा तेरा घर किताबें, सारी किताबें चढ़ गया, तो किताबें चढ़ गई जो मेन लफ्ज है ये इसके अंदर बहुत ज्यादा तंज है। हम लिया उन्होंने उससे कि बात तो हंसी की है कि किताबें चढ़ गया, तो किताबें चढ़ गया का मतलब यह है कि झिंगूर जो है वो किताबों को खा जाता है एक, लेकिन उसके दूसरे माना ये लिए गए कि इंसानों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है लेकिन झिंगूर खा रहे हैं, झिंगूर पढ़ रहे हैं।
सही बात।
तो फिर इंसान ज्यादा आलिम फाजिल हुआ या झिंगूर?
झिंगूर। सही बात।
फिर कहा कि उन्होंने बताया कि भाई ये तू कहां कहां जब जिंदा था तो बेड के नीचे रहता था, फिर किचन में रहता था, फिर यहां ऐसी चार पांच जगह उन्होंने बताई उसकी, और उसके ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने बांधा। कहा कि भाई ठीक है झिंगूर है, मुझे बहुत जरूरी काम से, मुझे उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी थी लेकिन ठीक है नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ सकता, इसको जनाजे को कंधा दे देता हूँ पहले क्योंकि ये आखिर में चीटियां उसको लेकर जा रही थी झिंगूर को मरे हुए, और आखिरी में बोले ये इन्हीं के पेट में चले जाएगा, आखिरी आरामगाह जो है वो ये चीटियों का पेट है इसकी, क्योंकि अब वो उसको खा डालेंगी, तो चलो तब तक मैं इसको कांदा दे देता हूं। तो वो झिंगूर का जनाजा जो है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने बहुत सारी बातें जो कह दी जो बहुत काम की थी, जो मैसेजेस देती है हमको
बराबर।
और दो ये जो खास तौर से इसमें जो ये जो रेफरेंस दिया है उन्होंने, तो एक पहले की इंशाइया ने कहा देखिए कोई भी चीज अगर आप कहना चाह रहे हैं किसी भी बात को तो उसके लिए आपको इल्म होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप लिख रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं और आप लिखते चले जा रहे हैं, नहीं आपको पहले इल्म होना चाहिए। तो एक इंशाइया निगार है वो ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी चीजें स्टूडेंट्स को जो पढ़ने वाले हैं हमको ऐसी ऐसी बातें उसमें दे जाता है कि हम सोचते रहते हैं कि यार हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री कहां से आ गई, हम तो उर्दू पढ़ रहे हैं ना, उर्दू पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री कहां से आ गया, कैसर विलियम कहां से आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, फिर इधर से का, ये उसका इल्म होता है। तो इस तरह से ये
तो झिंगूर का जनाजा जैसे कि आपने कहा कि वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे फिर भी वो रुक गए और उसका वो उसको अच्छी तरह से उन्होंने विदा कर दिया। तो ये जो उन्होंने जो प्रहार किया है कि आप आजकल पढ़ते नहीं है, जैसे मॉल में जाते हो तो 1000 रुपये की खरीदारी कर लेते हैं लेकिन अगर 100 रुपये की किताब खरीदनी हो तो 10 बार सोचते हैं कि क्या जरूरत है,
सही,
ये
सही।
कहीं भी मिल जाएगी, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तो ये जो पढ़ने का जो अपना आजकल जिससे हम केयरलेस हो गए पढ़ने के बारे में, तो उसके बारे में ख्वाजा हसन साहब ने जो लिखा है वो बहुत ही अच्छा है और वो सही मायने में आज भी वो बहुत रेलेवेंट है।
बहुत बहुत
ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख दिया तो लिख दिया, उस जमाने का था लेकिन आज भी अगर हम अच्छी तरह से पढ़े तो आज भी वो बहुत
बल्कि आज ज्यादा जरूरत है,
आज ज्यादा जरूरत है, सही बात है सर। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गुनुदगी के बारे में
जी
जो इंशाया है उसके भी बहुत चर्चे मैंने सुने हैं, और इसके बारे में हमने स्टूडेंट्स को जरा आप अगर और जानकारी दे तो अच्छा रहेगा।
जी जी जी, गुनुदगी जो है लफ्ज गुनुद, इसका मतलब होता है ऊंघना।
अच्छा,
गुनुदगी यानी ऊंघना, जो नींद के और जागने और नींद के दरमियान की एक कैफियत है।
क्या
कि ना आप सोए हुए हैं ना जाग रहे हैं। खासतौर से जो उर्दू के सुनने वाले हैं वो गुनूदगी के अच्छा मतलब समझ सकेंगे इस मिसाल से कि हम जब नमाज जुमा की नमाज को बैठते हैं और इमाम साहब खुतबा देते हैं तो वो उस दरमियान हमारी जो हालत होती है वो गुनूदगी के आलम, गुनूदगी की कैफियत उसको कहा जाता है। तो अब गुनूदगी असल में होती क्या है? तो आप कोई काम को आपने सोचा कि भी चलिए सुबह की फजर की नमाज में पढ़ लूं, तो कहा कि हाँ फजर की नमाज के लिए उठना है, तो बस उठना है उठना है उठना है, तो सो गए फिर उठ नहीं पाते, वो गुनूदगी होती है कि जो आपको थोड़े वो देती रहती है, एक बीच में डोजेस देती रहती है, तो ये गुनूदगी होती है। गुनूदगी एक इंशाइये का उन्होंने मौजू इसलिए बनाया उसको कि एक ऐसी चीज के वाकईतन इससे एक सुस्ती और काहिली, जो एकदम चुस्त आदमी होता है, बहुत एक्टिव और मुतहरिक और फाल आदमी होता है, उसको इसकी कोई गुनूदगी उनूदगी का कोई चक्कर होता नहीं है उसका। लेकिन एक आदमी जिसको कई बहाने उसको तलाश करने की जरूरत नहीं होती है, वो झपकी ले लिया उसने कि वो अरे आंख लग गई थी, क्या आंख लग गई थी, गुनूदगी आ गई थी। तो वो कैसे कैसे इस अंशाइये में ये बताया उन्होंने कि किस तरीके से कैसे कैसे ढंगों से इंसान कामों से बचना चाहता है और बचता है, और गुनूदगी जो है वो उसको किन किन कामों में गुनूदगी आ जाती है उसको। तो उन्होंने बहुत मजाही अंदाज में उसको ये कहा है। और ये जितने भी इंशाइया, खासतौर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो सुन रहे हैं, तो उन लोगों ने ये सारे के सारे जितने आपके सिलेबस में हैं ये सारे के सारे इंशाइया पढ़ें। और खासतौर से अगर आपको बहुत ज्यादा चुस्त जो इंशाइया की जुबान है वो मुश्ताक अहमद यूसुफी की, वो हासिल कीजिए आप और वो पढ़िए। मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, और उसमें उनकी किताबें हैं आबे गुम, जर गुजिश्त, खाकम बदहन और चराग तले, ये चार किताबें, ये मिजा की आला तरीन किताबें, मुकम्मल किताबें समझी जाती।
सर गुनूदगी के बारे में जैसे कि आपने कहा कि ये एक ऐसी स्टेट है या ऐसी पोजीशन है
जी
के जब आदमी ना जाग रहा है ना सो रहा है, तो वो बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है कि समझो अभी हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हैं और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि शिक्षा की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, और हमारा ये रवैया रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सरकार का काम है।
बहुत अच्छे,
तो हम भी एक गुनूदगी के स्टेट में है।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर।
तो ऐसे कौन कौन से सवाल इस इंशाया में उन्होंने उठाए हैं इसके बारे में जरा आप मुझे बताइए।
अहम जो सवाल उन्होंने उठाया है वो यही, इसी बात को, अहम जो मसला है वो यही है कि हम जो काम हमने करने चाहिए वो हम लोग कर रहे नहीं, जो काम नहीं करने चाहिए वो लोग हम उसमें उलझे में।
सही बात,
तो ऐसे से तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे से ना मुल्क तरक्की करेगा ना इंसान खुद अपने आप की तरक्की कर पाएगा।
सही बात,
तो उसके लिए तो जरूरी है कि आपको उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।
क्या बात, क्या बात, क्या बात।
तो इस कैफियत में आना पड़ेगा, यानी एक झटके से उस गुनूदगी का जो कवर है, कवच है, उसको दूर करना, उसको तोड़ देना पड़ेगा। जिस तरह से एक चूजा अंडे को का जो खोल होता है उसको तोड़कर बाहर निकल आ जाता है और एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है, तो हमको गुनूदगी के खोल को तोड़कर नई दुनिया में दाखिल होना है।
क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। सर गुनूदगी के बाद मैं जानना चाहूँगा 420 के बारे में, जो जिसके भी काफ़ी चर्चे हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, बहुत से उर्दू साहित्यकार उसका जिक्र हमेशा करते रहते, तो इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि 420 जैसे हम लफ्ज कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक ऐसी पिक्चर आ जाती है कि ये 420 है, ये उसने ये किया, तो ये 420 इंशाइयक में क्या क्या जिक्र है ये जानना चाहूंगा।
जी 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 420 जो इंशाइया है ये हाजी लखलक जिस नाम से वो लिखते थे वो हाजी लखलक के नाम से लिखते थे, लेकिन उनका असल नाम था अता मोहम्मद अबुल ओला चिश्ती, ये पूरा नाम था उनका। तो इस इंशाइये में 420 जो है उन्होंने कहा कि भी 17 बरस में बाहर के मुल्क में रहकर आया और अचानक मैं अपने मुल्क में आया तो मैंने देखा कि भी एक चीज की बहुत धूम मची हुई है जिसका नाम है श्री 420। फिर उन्होंने कहा कि भी ये 420 जब बोले अब उसके बाद मैं जहां जहां जा रहा हूं तो मेरा 420 से वास्ता पड़ रहा। बोले मैं बस में गया तो कंडक्टर के बैच के ऊपर उसका नंबर 420 लिखा हुआ, वहां से आगे बढ़ा तो पुलिस वाले के बैच के ऊपर उसका नंबर 420 लिखा हुआ, फिर और आगे गया तो कहीं बस के ऊपर तो बस का 420। तो जहां जहां जा रहा हूं तो वो, फिर मैंने एक दिन एक मरतबा एक साहब मेरे दोस्त मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 420 क्या है, तो तब जाकर उन्होंने मुझको बताया कि 420 असल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो वो पेनल कोड है उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 420 जो जालसाजी के लिए उस पर उसको
अंदर
हाँ वो इम्प्लीकेट किया जाता है उसको। तो तब मुझे मालूम हुआ कि नहीं ये तो हम, फिर मुझे गर्व फख्र भी हुआ कि देखो हमारा इंडिया कितना ये है कि मामूली मामूली महावेरों में भी कानून को इतना जानता है कि किसी को 420 यानी कानून के एक सेक्शन का नाम लेके बुलाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसको उसको बांधा है। और फिर उन्होंने आकर एक बड़ी अच्छी कहानी उन्होंने बयान की कि 420 के एक बड़ी एग्जाम्पल जो उन्होंने दी है उसमें उन्होंने कहा कि भी एक सेठ ने इरादा किया कि एक अखबार शुरू किया जाए। अब उन्होंने उसके लिए एक एडिटर यानी मुदीर चीफ एडिटर की तलाश शुरू कर दी। तो एक बंद हो चुका अखबार उसके एडिटर जो है वो पूरी टीम खाली बैठी हुई थी। तो वो उन्होंने वो उस एडिटर ने जाकर उनसे कांटेक्ट किया कि साहब ठीक है मैं आपके एडिटर बनने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी अखबार निकालने के लिए तैयार हूं, तुम जैसा आदमी मैं ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप क्या देंगे मुझे। तो उन्होंने कहा कि सेठ साहब ने कहा कि अखबार चलने के लिए मैं आपको 100 रुपये महीना और उसमें 20% नफा दूंगा तुमको। यहां तक तुम हो गया पूरा मामला। अब 420 की शुरुआत यहां से कैसे होती है, कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने उसको हंसी मजाक के अंदाज में बयान किया है कि अब वहां से एक महीना तो इन्होंने घर पर आए अपनी बीवी बच्चों को कह के भी ठीक है हमको 100 रुपये महीना। तो उस जमाने की बात है ये 100 रुपये, आज के हमारे तलबा ये ना सोचे कि 100 रुपये ही नहीं क्या बात है आपके तो जेब खर्च से भी कम हो जाता है।
सही बात।
तो उस वक्त के 100 रुपये जो है वो बहुत हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 100 रुपये और 20% मुनाफा उसका। तो उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे कि 3 महीने के मुनाफा जमा करके एक कार ले लेंगे, 1 महीने के मुनाफे में ये कारपेट जो है कालीन ये बिछा लेंगे, 1 महीने के मुनाफे में कुर्सियां फर्नीचर वगैरह क्योंकि एडिटर का घर है बड़े बड़े लोग मिलने आएंगे, ऐसी ख्याली पुलाव बनाते चले गए। फिर चलिए महीना गुजर गया तो उन्होंने सेठ के पास गए कि साहब महीना गुजर गया और आप 20% जो मुनाफा है वो भी दे। तो कहा कि 100 रुपये तो उन्होंने महीना दे दिया लेकिन 20% के उन्होंने कहा कि नहीं मैंने महीने का नहीं कहा था साल भर का कहा था एक साथ। तो चलो इन्होंने भी सोचा कि चलिए इकट्ठे एक साथ ले लेंगे। साल हो गया फिर ये गए उसके पास सेठ के कि भाई साहब आपका अखबार भी बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक साल पूरा हो गया ठीक है वो अभी अकाउंट बन रहा है मैंने उससे कह दिया है। तो अब वो साल ऐसे ही एक साल गुजर गया आगे पीछे हाँ वो बन रहा है इसमें। फिर दूसरा साल आ गया तो उन्होंने कहा कि साहब वो आपने साल भर के लिए कहा था वो 20% का मुनाफा मेरा कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो अकाउंटेंट जो है ना वो बहुत चोर टाइप का अकाउंटेंट था तो अपन अकाउंटेंट ही बदल देते। तो उन्होंने वो अकाउंटेंट बदल लिया तो एक साल जो है वो नया अकाउंटेंट ढूंढने को लग गया। इस तरह 3 साल हो गए फिर उनको बहाना कर दिया फिर ऐसे 4 साल करके इस तरह से उनको आखिर में कुछ ही नहीं दिया। और आखिर में कहा कि भाई देखो भाई ये 4 साल का हिसाब इसमें तो हम नफे में है ही नहीं हम तो घाटे में है तो 20% मुनाफा काय का मिलेगा। तो ये सब बात हुई और आखिर में जब एडिटर ने कहा कि साहब आपका नया घर बना ये अखबार की वजह से अखबार चला आपका नया घर बना। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो घर इसलिए बना वो भी उसमें मेरा कुछ नहीं है वो तो अखबार के फायदे के लिए। उन्होंने कहा कैसे। कहा कि भाई अखबार अगर बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो घर बेच के पैसा लगाएंगे इसमें। कहा कि अच्छा ये जो गाड़ी आपने अखबार के पैसे से ली तो मुझे मुनाफा नहीं दिया। और वो तो कहा, सेठ साहब ने कहा कि अरे भाई गाड़ी इसलिए कि मेरे पैर की चप्पल जो वो चलने चलने से घिस जा रही थी, तो अब यह कि मैं चप्पल एक नई चप्पल खरीद नहीं सकता, तो इसलिए मैंने कार खरीद ली कि चप्पल घसी ना। तो इस तरह से 420 जो है वो हर बार वो होती रही। तो ये 420 को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये इंशाइया लिखा है।
जैसे कि लकलक जी ने कहा कि 17 साल बाहरवी मुल्क में रहने के बाद जब अपने देश में आया तब इस तरह के लोग बदले हुए थे। और ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक भ्रष्टाचार के ऊपर और जिस तरह से दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है अपने समाज में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मजा बड़े मजा के ढंग से किया हुआ है। तो सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम नॉवेल पढ़ते हैं या उर्दू का दूसरा किसी साहित्य का प्रकार पढ़ते हैं तब हमको ये जानने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है या इस जो वातावरण है इसके क्या क्या मायने हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो अब नहीं है। लेकिन इंशाया का ये जो इंशाया निगार है वो हमको किस तरह से मदद करते हैं कि इंशाया में हम और इंटरेस्ट लें और एक इंशाया को एक साहित्य प्रकार के रूप में अपने आप में साबित करें और लोगों का जैसे अफसाना है या नॉवेल है जैसे लोगों का मन उस पर ही ज़्यादा जाता है। जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं अफसाना पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा ख्याल में रहता है ना कि इंशाया। तो हमारे स्टूडेंट्स ने और एक जनरल रीडर जो उर्दू के हैं उन्होंने इंशाया को किस नज़रिए से देखना चाहिए और किस तरह हम इंशाया का जो विस्तार है जो इंशाया निगार है उनको भी प्रेरणा मिले लिखने की, तो इसके बारे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है इसके बारे में ज़रा बताइए।
जी देखिए इंशाया निगार इंशाइये को अगर हम अदब की एक सिंफ मानते हैं जो है जिस तरह से शायरी है अफसाना है नॉवेल है आप बीतियां हैं ये सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ इंशाइये में और इन सारी असनाफ में अदब की अहम ये है कि इंशाइये में थोड़ा लाइट मूड होता है कि पढ़ने वाला बैठता है तो अच्छे हल्के माइंड के साथ बैठता है और उठता है तो हंसते हुए उठता है, लेकिन वो एक मैसेज भी लेकर उठता है। हम अफसाना पढ़ते हैं तो अफसाना भी एक मकसद पूरा करता है कि अफसाना हमको जिंदगी के एक मसले की बात मसले के आसपास घुमाता है और हमको दिखाता है कि ये मसला और उसका मुशाहिदा अफसाना निगार ने कैसे किया वो है यहां, लेकिन उसमें संजीदगी होती है। नॉवेल में अफसाने को आपने बहुत बड़ा कर दिया मैग्नीफाई जिसको बोलते हैं हम बड़ा कर दिया उसको, तो एक 4-5 सफात पर लिखा गया अफसाना उसको आपने खूब खोला खूब खोला खूब डिटेल्स डाल दी कैरेक्टर्स उसमें आते जाते रहे तो वो बन गया नॉवेल। दोनों की नॉवेल और अफसाने की खास बात यह है कि दोनों की भी प्लॉट की जरूरत होती है, दोनों को अफसाने का भी एक प्लॉट होता है और नॉवेल का भी एक प्लॉट होता है, लेकिन इसमें अहम तासुर जो होता है वो संजीदगी का होता है। इंशाइये में एक खास चीज जो होती है वरना एक आम मजमून और इंशाइये में कोई फर्क ही ना रहे,
सही बात,
लेकिन एक अहम फर्क यही रहेगा कि उसमें उसको एक हंसी मजाक के मिजाक के अंदाज में तंस के अंदाज में उसको लिया जाता है। जो अहम जो हमारे दरमियान इंशाइया निगार जो हम देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं अब्दुल हलीम शरर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी जो मैंने आपको नाम बताए हैं नूर मोहम्मद अंजुम मानपुरी हैं जो जिनके हमारे सिलेबस में शामिल हैं ये अब्दुल अजीज़ फलक पैमा हैं और मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग हैं मुल्ला रमूजी हैं हाजी लखलख हैं रशीद अहमद सिद्दीकी हैं अहमद शाह पितरस बुखारी हैं शौकत थानवी हैं कन्हैया लाल कपूर हैं कृष्ण चंद्र हैं और आपके वजाहत अली संदेलवी रामलाल नावी शाह अली अकबर कासिद असलम अजीमाबादी हैं जावेद वशिष्ठ हैं यूसुफ नाजिम हैं एक बड़ा नाम है यूसुफ नाजिम एक बड़ा नाम है उसके इंशाइया उर्दू इंशाइये का तंजो उर्दू तंजो मिजा का एक बड़ा नाम है फिक्र तौंसवी यूसुफ नाजिम कन्हैया लाल कपूर ये तीन जो तीन का जो तिगड़ी है बड़े नाम मुश्तबा हुसैन ये चौथा एक नाम और ये है अहमद जमाल पाशा नरेंद्र लूथर हैं उसके बाद मिर्जा मोहम्मद जमा खान आजुर्दा हैं, मोइन एजाज, कमालुद्दीन एजाज, अली अरशद और शफीका फरहत जो भोपाल में रहती है। तो ये लोग इंशाइये के खास इंशाइया निगार हैं, जिनको पढ़ने का मैं चाहूँगा कि भी हमारे तलबा स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तो वो लोग ये जितने नाम मैंने लिए हैं तो इनके एक तो जो सिलेबस में आपके है वो उसमें भी पढ़ें, और इसके अलावा भी इनके जो किताबें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आपने टाइप किया और गूगल पर टाइप किया और सीधा आप इन सब की किताबें आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसानी रहे।
धन्यवाद सर, आज आप यहाँ आए और हमारे स्टूडेंट्स को इंशाइयों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जानकारी की बदौलत वो इंशाइया जरूर पढ़ेंगे और उसी नज़रिए से पढ़ेंगे जैसे कि आपने कहा
जी।
और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में और जानकारी हासिल करें और ये भी जान लें कि इंशाइया का जो मकसद है वो अपने आप में सुधार लाना है।
बिल्कुल,
और जब हम अपने आप में सुधार लाएंगे तो समाज सुधारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
सही।
मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे अगले प्रोग्राम में भी आप और जो मशहूर इंशाइये हैं इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को अधिक जानकारी दें। धन्यवाद
जी। बिल्कुल बिल्कुल।